Subress.
On demand. Follow Subress Radio on Twitter and Facebook now.
चलिए अब लौट कर आते हैं हम यहाँ पर आपके अपने सबरस रेडियो पर प्रोग्राम मिड मॉर्निंग शो. मैं अंबर, मेरे सामने डॉक्टर राजीव वाधवा जी हैं. तो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहब एंड वेलकम बैक.
गुड मॉर्निंग अंबर जी, आपको भी और सभी सुनने वालों को भी.
कैसा रहा वीकेंड?
बहुत अच्छा, नाइस क्रिकेट, नॉट सो गुड वेदर बट
इसीलिए हम कहा करते हैं कि बाहर का मौसम जैसा भी हो, घर के अंदर के मौसम को हम लोग महकाए रखते हैं.
बिल्कुल सही बात.
और कल तो यहाँ सुना है कि अपना मेल्टन रोड बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, कल ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा था.
जी सुना तो मैंने भी अंबर जी.
चलिए और अब आज जो बातचीत का सिलसिला हम कर रहे हैं शुरू, इसको जारी रखेंगे. बल्कि शुरू तो पिछले हफ्ते कर लिया था लेकिन आज इसे जारी रखेंगे. बात कर रहे हैं हम छुट्टियों के बारे में कि किन बातों का ख्याल रखा जाए, वैक्सीनेशन, मेडिकेशन या इंश्योरेंस वगैरह, ट्रैवल इंश्योरेंस के अलावा मेडिकल जो इंश्योरेंस होती है उसके बारे में भी. तो क्यों ना वहीं से पिक करें जहां पिछले हफ्ते छोड़ दिया.
जी अंबर जी, तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने शुरू किया था कि ट्रैवल में जब हम कंट्री से बाहर जाते हैं और वहां पर अपनी हेल्थ का हमें क्या ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या तैयारियां यहां से करके जानी है. तो पिछले हफ्ते काफी सारी बात हुई, इंश्योरेंस के बारे में हमने बात की और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जगह पर, किस किस कंट्री में, कि उसके बारे में थोड़ा पता करें आप जहां जा रहे हैं. खासतौर पर अगर आप किसी नई जगह जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें. आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी मौजूद है इंटरनेट पर, तो आप देख सकते हैं. फिट टू ट्रैवल नाम की एक वेबसाइट है, आप सर्च कर सकते हैं फिट टू ट्रैवल. उसमें सारी जानकारी दी होती है अलग अलग कंट्रीज के लिए. तो जिस भी देश में आप जा रहे हैं वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए वहां पर खास तौर पर ऐसी क्या चीज है जो आपको उसके लिए प्रिकॉशन लेनी चाहिए. इंडिविजुअल अलग अलग बीमारियों के बारे में अभी हमने बात शुरू नहीं की है, वो भी आगे आगे चलकर करेंगे. अगला इसी सिलसिले को आगे चलाते हुए जो अगला टॉपिक आता है वो ये है कि जो एयर ट्रैवल है, तो आम तौर पर कुछ लोग वैसे शिप्स पर भी जाते हैं, लेकिन आम तौर पर इस कंट्री से जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हवाई जहाज से ही जाते हैं फ्लाई करके. तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें वो लोग जिन्हें या तो ट्रैवल नहीं करना चाहिए या करना चाहिए तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ बहुत ध्यान से, वो एक पूरी लिस्ट है जो मैं आपके सामने आपसे शेयर करना चाहता हूं. तो उसमें एक तो वो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, अगर 36 वीक से ज्यादा, 36 वीक से ऊपर उनकी प्रेग्नेंसी है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वो हवाई जहाज से सफर ना करें. वो लोग जिन्हें कोई ऐसी एक्टिव कम्युनिकेबल डिजीज है, ऐसी कोई बीमारी है जो दूसरों को फैल सकती है, तो अपने लिए तो नहीं लेकिन दूसरों के लिए कि वो बीमारी बहुत ज्यादा ना फैले, उन्हें मना किया जाता है कि वो प्लेन पर यात्रा ना करें. ट्यूबरक्लोसिस उसमें से एक है, टीबी जो है. वो लोग जिनको एंजाइना होता है या चेस्ट पेन होता है रेस्ट पर, कि वो बैठे बैठे उनको जो है एंजाइना का पेन होने लगता है, या हाल ही में अगर उनको हार्ट अटैक हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे कहते हैं वो हुआ है, या स्ट्रोक हुआ है हाल ही में, तो उन्हें अपने स्पेशलिस्ट से, खास क्योंकि अगर हार्ट अटैक हुआ है या स्ट्रोक हुआ है तो जाहिर है कि उनका हॉस्पिटल में इलाज हुआ होगा, तो उनसे पूछ लें कि वो कब ट्रैवल कर सकते हैं, कब वो फिट होंगे, और उस सलाह के बिना बिल्कुल भी ट्रैवलिंग ना करें प्लेन पर. वो लोग जिनको साइनसिस में, नाक के अंदर बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है या कान में बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है, उनको भी सलाह दी जाती है कि वो हवाई जहाज पर ना ट्रैवल करें, क्योंकि वो प्रेशर के उतार चढ़ाव से वो इन्फेक्शन और बढ़ सकता है या और फैल सकता है. वो लोग जिनका कोई भी हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई चोट लगी है, खासतौर पर अगर आंख में या चेहरे पर कोई चोट हुई है, कोई उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है, आंख का ऑपरेशन हुआ है, पेट में अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी कोई हुई है, तो वो भी अपने जो सर्जन है जिसने ऑपरेशन किया है उनसे थोड़ा सा क्लियर कर लें कि वो यात्रा कर सकते हैं कि नहीं, वरना उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. वो लोग जिनको सांस की सीवियर बीमारीज हैं, सीओपीडी है, बहुत अनकंट्रोल्ड अस्थमा है, हल्के फुल्के अस्थमा की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि वो बैठे बैठे उनकी सांस फूलती रहती है, चलने की भी जरूरत नहीं तब भी उनकी सांस फूलती है, तो उनको भी सलाह यही दी जाती है कि वो शायद फिट नहीं होंगे कि वो प्लेन पर सफर कर पाए। एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं न्यूमोथोरैक्स, उसमें आपकी जो चेस्ट वॉल है, सीने की जो आगे की और फेफड़ों के बीच में, उसमें हवा भर जाती है एक्स्ट्रा, ये लंग्स की हवा नहीं, लंग्स में तो हवा होती ही है, उनके बाहर की तरफ हवा भर जाती है और वो काफी डेंजरस हो सकता है, तो अगर वो कंडीशन आपको है तो आपको ध्यान रखना है। सिकल सेल एनीमिया जिन लोगों को है, और जिनको है उन्हें पता होगा कि उनको है, उनको ट्रैवल के लिए कहा जाता है कि वो एयरप्लेन में ट्रैवल ना करें, और यहां हम सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं, सिकल सेल डिजीज की बात कर रहे हैं, सिकल सेल ट्रेट की बात नहीं कर रहे हैं या सिकल सेल कैरियर की बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत लोगों को होता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जिनको एक्चुअल सिकल सेल बीमारी है उनकी बात कर रहे हैं। और अगर किसी को कोई साइकोटिक इलनेस है, कोई मेंटल इलनेस है, और अगर वो अच्छी तरह से कंट्रोल में नहीं है तो उनको भी कहा जाता है कि वो प्लेन पर ट्रैवल ना करें क्योंकि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये कुछ लोग हैं जिनको अगर फ्लाई करने का कोई प्लान है उनका, कोई प्लेन वगैरह लेने का, तो उन्हें पहले अपने स्पेशलिस्ट से क्लियर कर लेना चाहिए कि वो फिट हैं कि नहीं है।
तो ये लेकिन यहाँ एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्षमा चाहती हूं, अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो कि उनके लिए ट्रैवल जरूरी हो, उनका पहुंचना बेहद जरूरी हो कहीं, घर परिवार में कभी कुछ मान लीजिए हादसा हो जाता है, या फिर बहुत ही खुशी का मौका है, खुशी गमी लगे रहते हैं जिंदगी में, उन हालात में अगर उन्हें, जाहिरी बात है शादी ब्याह जैसी कोई अगर या कोई और खुशी का मौका है तो पहले से उनको नोटिस मिलता है
जी,
लेकिन खुदा न खास्ता कोई गमी वाली बात होती है तो उनको नोटिस नहीं मिलता, उन्हें फौरन जाना पड़ता है जल्द से जल्द, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं
जी? तो अम्मा जी, बात वही है कि सर्कमस्टांसेस कोई भी हो, आपकी हेल्थ तो जो है वो है
जी,
तो अगर आपकी हेल्थ इतनी खराब है, मान लीजिए आपको सीओपीडी है कि आप ऑक्सीजन पे चलते हैं घर में भी, और या आपको कोई बहुत ही कोई सीवियर इन्फेक्शन है जिनकी हमने जिक्र किया, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, 36 वीक से ऊपर प्रेगनेंसी है उनकी, आपको अगर एंजाइना या चेस्ट पेन वगैरह होता रहता है, हर समय बैठे बैठे होता रहता है, आप वेट कर रहे हैं कि कोई ट्रीटमेंट होगा, तो जाना मजबूरी है, ये बात समझी जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी तबीयत और खराब हो सकती है अगर आप ट्रैवल करते हैं, आपकी जान का खतरा भी हो सकता है, तो आई थिंक इन दोनों को वे करना चाहिए कि क्या है जहां आप जाना चाहते हैं, वो कितना जरूरी है, आप कितना उसको जरूरी समझते हैं, और दूसरी तरफ अपनी जान का खतरा वो आप कितना जरूरी समझते हैं, और उसको बैलेंस करके आपको डिसीजन लेना है कि अगर वो ऐसा है कि ठीक है जाना है तो जाना है, जान जाती है तो चली जाए, तो आप फिर ये डिसीजन ले सकते हैं कि ठीक है मुझे जाना है, लेकिन इसमें बात सिर्फ आपकी ही नहीं है कि आपकी मर्जी है या आपने डिसीजन ले लिया है, अगर आपकी तबीयत बहुत ही खराब है, आप व्हील चेयर पे हैं, आपको ऑक्सीजन लगी हुई है, तीन लोग आपके साथ हैं, आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको प्लेन पर वो जाने भी नहीं देंगे, आप भले ही वहां टिकट लेकर पहुंच जाए तो दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू ट्रैवल, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, और इसमें कोई कोई 100% राइट और 100% रॉन्ग डिसीजंस नहीं होता है, हर किसी की अपनी फीलिंग होती है, किसी का है कि हाँ मेरे बेटे की शादी है तो मुझको जाना है, अब वो जान जाती है तो जाए, मुझको जाना है, दूसरा कह सकता है कि नहीं जानकर रिस्क तो नहीं लेना है, और ये तो आपकी बात हुई, फिर आपको जाने भी परमिशन भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो एक अलग बात है, तो ये हर किसी के सर्कमस्टांसेस उस वक्त पर क्या होती हैं ये देखते हुए उसके हिसाब से डिसीजन लेना होता है,
क्योंकि जहां इंसानी जज्बे की बात आती है तो फिर इंसान की सबसे पहली बात जो होती है दिल नहीं मानता, हम तो जाना चाहते हैं
जी बिल्कुल, और दिल की बात सुननी भी चाहिए, अगर ऐसा कोई अगर आप जा सकते हैं और आपका मन है तो जाना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको अफसोस होता रहेगा कि मैं क्यों नहीं गया या क्यों नहीं गई, लेकिन उसको बैलेंस करना है कि आप जाना क्या इतना जरूरी है कि अगर प्लेन में आपकी तबीयत खराब हो जाए और प्लेन को वापस मोड़ना पड़े या आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े, आपको जहां आप जा रहे हैं वहां आपका ये ट्रीटमेंट हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा, तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए फिर आपको पहले तो अपना डिसीजन लेना है कि आप जा रहे हैं कि नहीं, और फिर आपने अगर डिसीजन ले भी लिया कि हाँ मैं मैंने जाने का डिसीजन ले लिया है, तब आपको फिर एयरलाइन से और अपने डॉक्टर से बात करनी है कि आप कुछ जाने का मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। नेसेसरली आप वहाँ प्लेन एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं और आपको वो चढ़ने ही ना दें प्लेन पर। तो
नहीं, इसलिए भी पूछा क्योंकि एक दो सवाल ऐसे आए हैं जहां पर नहीं उनको इजाजत मिली, और एक व्यक्ति का ये कहना था कि आई वाज फीलिंग क्वाइट फाइन बट माय डॉक्टर रिफ्यूज्ड टू गिव परमिशन।
जी, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अंबर जी, उसके एयरलाइन ट्रेवल वालों ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं
जी।
तो हम आपको रूल्स के हिसाब से, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा कि अगर आप रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं तो आप जाने को तो चले जाएंगे, लेकिन वहां अगर तबीयत खराब हो जाती है और अगर आपको कोई इंश्योरेंस भी है तो वो भी माना नहीं जाएगा आपका, आपको उसकी कोई पैसे या कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने अगर कहा है कि आप मत जाएं और आप जाते हैं तो आपका इंश्योरेंस कैंसिल हो जाएगा।
ओके, चलिए आई होप कि जिन्होंने अपना ये सवाल भेजा था उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अब चलिए हम लौट कर आते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और एक सवाल के साथ ही शुरुआत करेंगे। सो डॉक्टर साहब, ब्रेक के दौरान हम जैसे बात कर रहे थे, परफ्यूम एलर्जी होती है जिन लोगों को, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को होती है
जी।
खुद मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे परफ्यूम या आफ्टर शेव लगाते हैं जैसे उन्होंने लगाई नहीं है बल्कि उसमें डुबकी लगाकर बाहर निकले हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो होती है स्मेल। तो उससे जिन लोगों को एलर्जी हो वो क्या करें, इनकेस कोई पैसेंजर बाजू में बैठा है, सीट बदलने की रिक्वेस्ट तो इंसान कर सकता है लेकिन अगर सीट बदलने के बाद भी वही समस्या हो तो।
तो वही उसमें अंबर जी, ट्रैवलिंग का ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो जो वो यहाँ पर करते हैं अपने आसपास अपने काम पर या जहां भी वो जाते हैं
जी।
तो जो डिपेंड की उनको किस चीज की एलर्जी है, उस एलर्जी से क्या रिएक्शन होता है वगैरह, तो उसको देखते हुए जो उनके स्टेप्स हैं या कोई दवाइयां उन्हें अगर दी गई हैं तो जो वो यहां करते हैं वही उन्हें प्लेन पर भी करना है, उसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई प्रिकॉशन नहीं है। सेम जो उनका रूटीन होता है वही उनको करना है जी।
सो वुड इट बी बेटर कि अगर वो फ्लाइट बोर्ड करने से पहले अगर टैबलेट ले लें,
अगर कोई एलर्जी की टैबलेट उनको दी गई है तो हाँ, अगर उससे लगता है कि वो लेने से उनको वो रिएक्शन नहीं होगा और ये वो पहले ट्राई कर चुके हैं तो जरूर ले सकते हैं जी।
ओके,
कोई नई दवा ना लें ट्रेवल करने से पहले, लेकिन अगर कोई ट्रस्टेड दवा उनको दी गई है कि जब आपको एलर्जी हो तब आप ये ले लें तो वो ले सकते हैं जी।
क्योंकि आपने कहा जो यहां करते हैं वही
वही करें जी।
तो आई गेस इन दैट केस, क्योंकि अगर आप फ्लाइट पे बैठ गए हैं
जी
तब आपने टैबलेट ली तो वो असर करने में भी थोड़ा वक्त तो लेगी।
हाँ, हर दवाई का थोड़ा टाइम तो होता है, अलग अलग दवा का होता है।
और अगर पहले से ले ली हो तो कुछ टैबलेट्स ऐसी हैं जो करीब 7-8 घंटे तक इफेक्टिव होती हैं
जी, तो आप वो ले सकते हैं अगर आपने उसको पहले ट्राई किया हुआ है।
ओके, सो आई होप जिन बहन ने ये सवाल पूछा था, और खुद जैसा मैंने कहा मैंने अपनी तरफ से भी पूछा क्योंकि मुझे भी बहुत ही ज्यादा, अगर कोई टब में डुबकी लगाकर बाहर आया हो तो फिर जाहिर बात है छींके भी बहुत ज्यादा आती है, नॉन स्टॉप स्नीजिंग होती है और लगातार स्नीज करें तो उससे भी डर लगा रहता है कि नाक की कोई मेम्ब्रेन वगैरह फट ना जाए, इतनी जो बदहाली होती है और आंखों से पानी वगैरह आता है तो वो भी फिर खुद अपने आप को तो अच्छा नहीं लगता बट आसपास वालों को भी होता है कि क्या यार इसके पास हम बैठे हैं
जी,
तो वो चीज भी होती है। सो थैंक यू फॉर दैट एंड आई होप कि उन्होंने सुन लिया हो जिनका ये सवाल था। ओके, एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद जहां से हमने ड्रॉप छोड़ा था इसको।
जी अंबर जी, और तो इसके बाद जो एक बड़ी प्रॉब्लम ट्रैवलिंग में होती है वो ये कि जो ट्रैवलर्स डायरिया होता है, बाहर जाकर लोगों का पेट खराब हो जाता है, इंडिया जाते हैं तो उसको लोग डेली बेली भी कह देते हैं, तो वो आमतौर पर जो है यहां पर हमारे साथ क्या है कि हम लोगों को आदत है कि जो पानी टैप में आ रहा है वो इतना साफ है कि हेल्थ के लिए वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक होता है और उसको पीकर कभी कोई बीमार नहीं होता है। कई लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं है या उन्हें लगता है कि नहीं मुझे इसको फिर फिल्टर करना है या वो बॉटल वाटर पीते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन हेल्थ के लिए यहां पर ये पानी जो है टैप से जो आता है हमारे लिए बिल्कुल सेफ होता है आमतौर पर, तो हम लोगों को वही आदत होती है। लेकिन बहुत सी कंट्रीज में आप जाएंगे वहां पर नल का पानी पीने लायक नहीं होता है, तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप जहां जा रहे हैं आप पता करें कि वहां का टैप वाटर सेफ है कि नहीं। टैप वाटर के अलावा कई बार लोग सोचते हैं कि अरे हम नेचर में हैं, नेचुरल है, खासतौर पर ऊपर थोड़ा पहाड़ों वगैरह पर हैं तो वहां का कोई नदी का या उसमें कोई स्ट्रीम आ रही है पहाड़ से उसका पानी भी अनलेस कि आप इतना ज्यादा ऊपर हैं पहाड़ी पर कि आपको पता है कि अब इससे ऊपर और कोई आदमी नहीं होगा या कोई जानवर नहीं होगा, तब तो ठीक है, वरना आप नीचे जो पानी पी रहे हैं ऊपर उसमें किसी जानवर ने क्या किया हुआ है, किसी इंसान ने क्या किया हुआ है, उसमें क्या गंद फैलाया हुआ है, वो आपको पता नहीं है और आप वही पी सकते हैं, तो वो भी सेफ नहीं होता है, तो उसको भी आप पीने से बचें। आप कहीं स्विमिंग करते हैं तो ध्यान रखें इस बात का भी, खासतौर पर जो छोटी जगहें हैं, कोई तालाब है या छोटी लेक है, उसमें स्विमिंग करना उतना सेफ नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो पानी गंदा हो, तो वहां लोकल्स को ज्यादा पता होगा, आप उसके बारे में ध्यान रखें। तो पानी के लिए खास तौर पर हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिस कंट्री में भी आप जा रहे हैं, जो भी पानी आपको दिया जा रहा है, अगर आपको पक्का नहीं है कि ये पानी सेफ है कि नहीं है पीने के लिए, तो फिर आप बॉटल वाटर लें। और बॉटल वाटर में भी बहुत सी कंट्रीज में ऐसा होता है कि वहां पर लोग इसमें भी चीटिंग करते हैं, तो वो बोतल खोलकर उसमें कोई भी गंदा पानी या टैप वाटर भर के आपको बेचने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप अगर बॉटल खरीद ही रहे हैं, आपको इतना ट्रस्ट नहीं है कि यहां का पानी कैसा होगा, तो फिर बॉटल खरीदने के साथ आप ये भी देखें कि वो ठीक से सील्ड है कि नहीं है, खुली हुई बोतल को खरीदने का उतना कोई सेंस नहीं बनता है। आप खुद पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं, तो प्यूरिफिकेशन के लिए वैसे भी अच्छा है अगर आप खुद कर रहे हैं, तो बार बार आपको बॉटल खरीदनी नहीं पड़ेगी, पैसे के लिए भी वो थोड़ा सस्ता हो सकता है, और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो सकता है कि हर समय आप प्लास्टिक की बॉटल एक के बाद एक नहीं यूज कर रहे हैं। तो एक बात और ध्यान रखनी है कि जिस पानी को आप पीने पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रैप वाटर है कि ये इस पानी को हमें पीना नहीं है, तबीयत खराब है, तो फिर उससे मुंह में रिंस भी करें, कुल्ला ना करें, उससे ब्रश भी ना करें, क्योंकि वो भी आपके मुंह में जा रहा है और पेट में जा सकता है। तो जो पानी पीने लायक नहीं है वो फिर ब्रश करने लायक भी नहीं है, फिर आपको ब्रश भी बॉटल वाटर से या बॉइल्ड वाटर से करना है।
और कुछ लोग जिनको छींटे मारने की आदत होती है कि अपने चेहरे पर अगर थकन वगैरह महसूस हो रही है या फिर नींद आने लगी है बीच में वो
तो वो तो बाहर है, तो हाँ। तो पानी आपने टच किया है स्किन हाँ। पर आपके पेट में नहीं गया है, तो जो डायरिया वगैरह होता है या तबीयत आपकी खराब होती है वो तो जब आपके पेट में जाएगा वहां पर होती है, तो अगर बाहर टच कर रहे हैं तो उतना नहीं है जी। तो जो अपना पानी खुद अगर आप बॉयल प्यूरिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज में आप जा रहे हैं या आप कहीं बहुत किसी पहाड़ पर या किसी रिमोट जगह पर जा रहे हैं जहां पर बॉटल वाटर आपको मिलेगा ही नहीं, तो लोग अपना खुद इंतजाम करके जाते हैं कि हम अपना पानी खुद वहां पर साफ करेंगे। तो उसके दो तीन तरीके होते हैं, एक तो बॉइलिंग है, तो पानी को आप उबाल सकते हैं, वो आप देखें कि वो सुविधा वहां पर आग भी है कि नहीं है, आपके पास बर्तन आग पानी सब है कि नहीं जिसे आप उबाल सकें। तो पानी उबालने के लिए ये कहा जाता है कि जब पानी में अच्छा सा उबाल आ जाए, वो पानी भाप निकलने लगे, वो खोलने लगे जैसे हम हिंदी में कहते हैं, रोलिंग बॉयल जैसे कहते हैं कि वो ऊपर नीचे होने लगे बर्तन में, तो अगर आप नॉर्मल एटीट्यूड पर हैं, बहुत ऊपर पहाड़ी पर नहीं है, तो एक मिनट उबाल आने के बाद आपने उसे और उबालना है, और तब ये माना जाता है कि वो पानी जो है पीने के लिए ठीक हो जाता है। अगर आप बहुत ऊपर पहाड़ी पर, बहुत हाई अल्टीट्यूड पर हैं, 2000 मीटर से ज्यादा ऊपर हैं, तो फिर आपको उसे 3 मिनट तक उबालना है, 3 मिनट या उससे ज्यादा। उबालने के अलावा टैबलेट्स होती हैं, तो जो मिलती हैं यहां पर आपको केमिस्ट से मिलेंगी, ट्रैवल की जो और स्पेशलिस्ट दुकानें होती हैं वहां पर मिलेंगी, तो वो उनका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, हर किसी को पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों को बड़ा खराब लगता है उसका टेस्ट, लेकिन अगर आप मजबूरी में कहीं हैं जहां पर पानी का आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वाकई गंदा पानी है, तो एटलीस्ट पानी पी तो आप सकते हैं भले ही उसका टेस्ट गंदा हो, तो ये टैबलेट्स कई लोग यूज करते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं। फिल्टर होते हैं पानी को फिल्टर करने के लिए, तो वो खास तौर पर अगर वो बहुत ज्यादा रेत वाला मिट्टी वाला गंदा पानी भी है, तो ये भी ट्रैवल इक्विपमेंट की जो शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, उन पर मिलता है। और इस फिल्टर को आप ध्यान से मांगें जब खरीदें, तो उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करें, ये वो फिल्टर होना चाहिए जो ट्रैवलिंग के लिए पानी को सेफ अंधापन आता है. यहाँ पर हम लोग अक्सर ये फिल्टर जो जगहों में लगे लगाए या हमारे अगर फ्रिज में या हमारे टैप में कई बार लोग लगा लेते हैं कि पानी फिल्टर हो जाएगा, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो यहाँ पर तो हम मान के चलते हैं कि पानी तो साफ है, तो वो सिर्फ पानी में से एक्स्ट्रा क्लोरीन किसी पानी में है या उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, उसको तो ठीक करता है लेकिन वो उसको उतना प्योरीफाई नहीं करता है. तो आप जब ट्रैवल के लिए फिल्टर लें तो ट्रैवल वाला फिल्टर लें, जो हम लोग घरों में आमतौर पर यहां पर जो फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं वो उसका उतना काम नहीं है. बैटरी की से चलने वाली कुछ पेन की तरह की डिवाइसेस होती हैं जो आप ऑन करके पानी के गिलास में डाल देते हैं और उसमें टाइम वगैरह लिखे होते हैं तो वो उसको कर देते हैं, वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं और उसको भी यूज कर सकते हैं. तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप अपना पानी कर सकते हैं. लेकिन सिर्फ पानी की बात नहीं है, अगर वहां पर पानी साफ नहीं है तो फिर जाहिर है कि उस पानी से और भी जो कुछ है, जो खाना बन रहा है या और भी जो चीजें हैं, तो उसमें भी आपको इन्फेक्शन होने का चांस होता है. और हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम बैक होम जाते हैं इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफ्रीका कहीं भी, और वहां जाकर फिर पेट खराब हो जाता है, तो उसको ट्रैवलर्स डायरिया या ट्रैवलर्स स्टमक कहते हैं. और कहीं भी हम हॉलिडे पर ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो जाहिर है कि वहां के फूड और खाने का हमारा ऑब्वियसली बहुत मन करता है कि बाहर जाएं और अलग अलग चीजें जो यहां पर कम मिलती हैं उनका टेस्ट करें. तो उसमें जाहिर है कि रिस्क है, तो वो रिस्क है एक तरफ कि आपको वो बाहर खाना है, आपका मन है और जैसे आपने पहले कहा कि मन नहीं मान रहा है, और दूसरा ये कि खाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा. तो उसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस लेकर चलना है, आप डिसाइड करें कि क्या ज्यादा जरूरी है. बाहर जब आप खाते हैं खाना तो उसमें अगर जो बहुत पका हुआ खाना है, जो अच्छे से खूब बॉयल किया हुआ है या खूब फ्राई किया हुआ है, तो वो उस खाने में तो बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है जो उसके हैं वो मर गए हों, लेकिन अधिकतर प्रॉब्लम होती है कि उसके बाद उस खाने का क्या हो रहा है, तो उसे किन हाथों से उठाकर वो हाथ साफ हैं कि नहीं सर्व करने वाले के, किन प्लेटों में या पत्तल में दिया जा रहा है वो कितने साफ हैं, और फिर उसके साथ जो एकम्पनीमेंट्स होते हैं. तो खाना तो सपोज फॉर एग्जांपल आपने किसी बहुत फेमस दुकान से समोसा लिया कोई, तो समोसा तो वो अगर आपके सामने ही डीप फ्राई हुआ है और 5-7 मिनट तक वो खोलते हुए तेल में रहा है तो उसमें तो कोई उम्मीद नहीं बची है कि उससे कोई इन्फेक्शन हो सकता है. अब लेकिन अब वो उसके बाद जिस आदमी ने उसको उठाकर आपको सर्व किया है, जिस प्लेट में सर्व किया है, और फिर साथ में जो चटनी या सैलेड और जो उसके साथ की जो चीजें होती हैं, उसका उनसे रिस्क काफी ज्यादा होता है इन्फेक्शन का. तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें. जिन दुकानों पर या जिन रेस्टोरेंट्स पर आपको लगता है कि अरे यहां पानी तो हम नहीं पियेंगे, तो पानी तो आप बोतल लेकर पी रहे हैं, लेकिन वहां पर फिर आप बर्फ भी न लें. मैंने कई बार लोगों को देखा है कि वो बोतल लेते हैं और फिर दुकानदार से कहते हैं बर्फ है क्या,
बर्फ दे दो.
और फिर वो वो बर्फ जिस पानी से बनी है वो कोई स्टरलाइज वाटर से तो पता नहीं, हो भी सकती है बट आपको पता नहीं है.
और स्ट्रीट फूड के शौकीन जो पानी पूरी वगैरह,
जी तो वही मैंने कहा खाने का मन तो होता है, शौक है और करना भी चाहिए, आप जा रहे हैं कहीं तो वहां की चीजें ट्राई करनी चाहिए. और दूसरी तरफ आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग लोकल लोगों की तरह अब नहीं है. ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि खासतौर पर हम लोग जो किसी दूसरी कंट्री से यहां आकर बसे हैं, जो इंडिया से आए हैं या अफ्रीका से आए हैं और हम पहले 20-25 साल अपनी उम्र वहां बिता चुके हैं, तो लगता है कि अरे हमें तो कुछ नहीं होता, हम तो वहां बहुत खाते थे. तो वहां पर इसलिए नहीं होता था क्योंकि आप वो खाते रहते थे, वो इन्फेक्शन की आपको थोड़ी थोड़ी डोज मिलती रहती थी, तो आपको उसकी इम्यूनिटी बनी रहती थी. अगर अब आप 10-15-20 साल से वो इन्फेक्शन आपको उसकी डोज नहीं मिली है तो फिर आप उतने इम्यून नहीं हैं. तो आप ये ना मान के चलें कि मेरा भाई जिसके साथ हम बचपन में रहते थे हम उसके साथ ही जाएं तो वो अगर पानी पूरी खा रहा है तो उसे कुछ नहीं हो रहा है तो हमें भी नहीं होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि आप उतने इम्यून नहीं है. तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें. फल वगैरह और सब्जियां भी ऐसा नहीं है कि वो इन्फेक्शन नहीं हो सकती, उनके ऊपर क्या पानी डाला गया है, क्योंकि फलों सब्जियों पर वहां पानी डालते रहते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है खासतौर पर ट्रॉपिकल कंट्रीज में, तो वो पानी भी कितना साफ है कि नहीं है. तो आप फल वगैरह लें तो वो फल लें कि जो आपने अपने सामने उसको छीला है और उसके बाद आपने खाया है. रखा हुआ खाना जो है वो तो बिल्कुल भी अवॉइड करें ऐसी जगहों पर, और कोल्ड कुक्ड चाहे वो मीट्स हो, सैलेड्स हो, और अगर अंडा है वो पूरा पका हुआ नहीं है, या डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं फ्रेश हैं अगर वो पॉस्चराइज नहीं है तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करें. फिश वगैरह आप खास तौर पर बहुत ध्यान दें, अगर आप फिश या शेल फिश प्रॉन्स वगैरह खाते हैं तो जहां पर पानी आपको लगता है कि गंदा है वो फिर अगर उसी पानी की फिश है तो उसमें भी वो इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें. खाना गर्म जो हो वो आप देखें कि खाना आप ले रहे हैं तो वो अच्छी तरह से पूरा पका हुआ हो, कच्चा ना हो और दोबारा गर्म किया हुआ ना हो, तो वो फ्रेश उसी समय बना है उस समय आप खा रहे हैं तो काफी सेफ है, बजाय इसके कि वो रखा हुआ है और आपने फिर उसको गर्म किया. अंडर कुक्ड जो फूड होता है खासतौर पर मीट्स होती हैं कई बार कच्ची रह जाती है, उनको तो बिल्कुल भी आप अवॉइड करें और उन्हें छोड़ दें. आप मान के चलें कि खाना जो है इधर उधर अगर रखा हुआ है, वहां पर कोई फ्रिज नहीं है, तो आप पूरा ध्यान दें कि कैसा है कि नहीं. मेयोनेज वगैरह है अगर वो खुली पड़ी हुई है, या मेयोनेज की तरह की और जो दूध या दही से बनी हुई चीजें हैं, क्रीम से बनी हुई चीजें हैं, उनको आप अवॉइड करें वहां पर. अगर आप बाहर खाना खाते हैं तो आप खाना लेने से पहले जरा एक मिनट देखें कि वहां सफाई का क्या माहौल है, उसके आसपास उसके जो सर्व कर रहे हैं उनका क्या पोजीशन है, बर्तन कहाँ धुल रहे हैं, अगर कोई वहां पे प्लेटें रखी हुई हैं तो वो साफ हैं कि नहीं है, चम्मच वगैरह, तो ये सब रखें. और कई बार खास तौर पे जो खाने के शौकीन होते हैं, और मैं भी ऐसा करता हूं कि हम लोग किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर अगर मुझे किसी का मैं समोसे का जिक्र किया, समोसा है या कबाब है, दिल्ली में जाता हूं तो कुछ जगह है जो मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं फिर अपना पूरा बैकपैक लेकर चलता हूँ. उसमें प्लेट भी होगी और एक छुरी कांटा या चम्मच भी होगी, छोटी कटोरियां भी होंगी और पानी का अपना इंतजाम खुद होगा. तो और हम उनसे कहते हैं कि जी कबाब या आपने समोसा बनाया है तो बस सीधा वो आग से सीधा प्लेट मेरी है, इसमें डालिए, हाथ भी उस पर ना लगे. और वो चूंकि हाई टेम्परेचर पर काफी देर तक पक चुका है और फिर उनसे आपने सैलेड भी नहीं लेना है, उनसे फिर आपने चटनी भी नहीं लेनी है. और वो कई बार हम लोग अगर कबाब वगैरह खाने जाते हैं तो चटनी और प्याज अपना हम घर से लेकर जाते हैं अपने डिब्बे में, उनसे सिर्फ कबाब लेते हैं और वहां खड़े होकर गरम गरम खाते हैं जी. तो और पानी भी अपना साथ में आप बॉइल्ड वाटर या बॉटल वाटर लेकर चलें. तो ये ऐसी जगहों पर आपको जो गर्म खाना है उससे तो इन्फेक्शन होने का चांस कम है, लेकिन जो उसके साथ में जो सैलेड और चटनी वगैरह है उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं जी. तो एक एक दो चीजें और फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं कि एक तो ये कि अगर आप किसी अननोन जगह पर खा रहे हैं तो वहां आप देखें कि जो बिजी रेस्टोरेंट है जहां भीड़ लगी है, तो एक तो ये कि जाहिर है कि वो चलता ज्यादा होगा तो हो सकता है उसका खाना भी ज्यादा अच्छा हो, और लेकिन चांस ये भी होता है क्योंकि वहां पर टर्नओवर है, वो बिक रहा है लगातार, तो आपको कल का बचा हुआ या पड़ा हुआ खाना नहीं मिलेगा. लेकिन कोई रेस्टोरेंट अगर खाली पड़ा है तो हो सकता है, पक्का नहीं है, हो सकता है बाय चांस वो उस समय खाली हो, लेकिन अगर वो खाली पड़ा हुआ है तो हो सकता है कि आपको वहां पुराना बना हुआ खाना जो है मिल जाए. तो बिजी रेस्टोरेंट में आप ध्यान दें. अगर आपको खास तौर पर कोई आपकी पर्टिकुलर डायट्री नीड्स है, आपको कोई फूड की एलर्जी है या आपको कोई बीमारी है कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो और आप किसी रिलेटिवली कम डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हैं जहां पर इतनी जागरूकता नहीं है उसके बारे में, तो आप पहले रिसर्च करके जाएं कि जो आपको चाहिए वो वहां मिलेगा कि नहीं, और नहीं मिलेगा तो क्या आप अपने साथ ले जा सकते हैं कि नहीं. आप ऐसा वहां जाकर फंस ना जाएं कि आप वहां चले गए अब जो आपको खाना चाहिए वो मिल नहीं रहा है तो आपकी तबीयत पर बुरा असर ना हो
जी. चलिए एक तो सवाल और भी है जिनका जिक्र मैं अभी कर लेती हूं, लेकिन पूरा जो सवाल है मैं बाद में ही पूछूंगी. अब ये तो खाने पीने की बातें हो रही थी
जी,
लेकिन बहुत से लोगों को ट्रैवल सिकनेस होती है
जी,
और ट्रैवल सिकनेस के लिए टैबलेट्स भी हो सकती हैं और रिस्ट बैंड भी हो सकता है, दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव है या फिर क्या बेहतर समाधान है वो हम बात करते हैं ब्रेक के बाद. तो हमारे श्रोताओं से हम यही कहेंगे अगर आपके पास अब भी कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न अभी से पहुंचा दीजिए, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर या 5 मिनट से भी कम समय होगा आपके पास, लेकिन हम आपको 5 मिनट देते हैं, अब से लेकर पूरे 5 मिनट तक का वक्त है आपके पास, तो अपना सवाल भेज दीजिए ताकि हमारी कोशिश रहे आज के आज ही आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए, वरना अगले हफ्ते तक खींच सकता है. इनका तो झुमका गिर गया बरेली के बाजार में, लेकिन आप लोग जब भी कहीं घूमने फिरने जाएं अपने सारे साथ सामान की जो है अच्छी तरह से देखभाल करें, खासतौर पर ज्वेलरी वगैरह पहनी हो तो अपने कानों के बूंदे वगैरह चेक करते रहें कि पीछे से उसका स्क्रू वगैरह ढीला ना होता रहे, क्योंकि कई महिलाओं को मैं आते जाते भी देखती हूँ कि वो झुमका ऐसे लग रहा होता है जैसे गिरने वाला है, तो मैं उनको इशारा कर देती हूँ कि आपका कान का जरा चेक कर लीजिए। ओके, तो चलिए ये गाने के साथ ही काम की बात भी हो गई। और एक तो सवाल जो पहुंचे हैं ट्रैवल सिकनेस के बारे में,
जी मैं
तो
अभी
एक
उसके
तो
बारे
वो
में
है रिस्ट बैंड टैबलेट्स, क्या बेटर ऑप्शन है या कोई तीसरा ऑप्शन भी है?
जी।
और दूसरा सवाल पहुंचा है, इनका कहना है हमें घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही बाजार पहुंचते हैं थोड़ा सा चलते हैं और पैर इतने भारी लगने लगते हैं, दुखने लगते हैं, उसके लिए कोई दवा है क्या?
जी, तो पैर दुखने के लिए अंबर जी डिपेंड करता है कि वो चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं बाहर जा रहे हैं कंट्री के या यहाँ पर लोकल ही हैं, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि आपका स्टैमिना नहीं है अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, और तो फिर पैर अगर दर्द होने लगते हैं तो उसके लिए तो अपना स्टैमिना थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको वाकई लगता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आप चलते हैं और फिर फौरन आपके पैरों में दर्द होने लगती है, पैरों में या टांगों में लेग्स में, तो आपको जरूर अपने जीपी को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि पैरों के में सर्कुलेशन में जो खून के बहाव होता है उसमें कई बार प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा हो जाता है कि आप जब बैठे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप एक सेट डिस्टेंस है वो उन्हें पता होता है कि मैं इतना चलूंगा या चलूंगी और उसके बाद दर्द शुरू हो जाएगा। तो अगर वो है तो उसे आप जरूर अपने जीपी को दिखा लें, वो काफी खतरनाक बीमारी भी कई बार हो सकती है।
जीपी को तो वापस लौटने के बाद ही दिखा पाएंगे।
जी जी। दूसरा जो आपने इसकी बात की ट्रैवल सिकनेस की, तो ट्रैवल सिकनेस वाकई अपने आप में एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ ट्रैवलिंग में ही नहीं है। ट्रैवल सिकनेस या मोशन सिकनेस हम कहते हैं वो तो उनको प्रॉब्लम यहाँ लोकल भी होती होगी, तो उसमें चाहे आप प्लेन पर जा रहे हों, चाहे आप बस पर, ट्रेन पर, या किसी बोट पर या कार पर, जैसे भी आप जा रहे हों, तो उसमें जी मतलाने लगता है, नौजिया होने लगता है, उल्टी भी, वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो उसको कुछ उसमें ट्रिक्स हैं। एक तो ये कि आप मोशन को जरा मिनिमाइज करें, आप ऐसी ट्रैवलिंग चूज करें कि जिसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। अगर आपको मूवमेंट होता है तो आप पहाड़ी पर अगर किसी कार से जाएंगे तो जाहिर है कि वो उसमें काफी बार 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 कार जब सड़कों पर घूमेगी तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो आप मोशन को कम करने की कोशिश करें। दूसरा, आप जब बैठें और कोई जिसमें भी आप हैं, चाहे वो कार है या बस है या ट्रेन है, वो जब चल रही है तो आप सीधे बैठें और सामने देखें, और फिक्स्ड आप जो है फिक्स पॉइंट, ऐसे कोई जैसे आप बिल्कुल बाहर होराइजन में की तरफ, क्षितिज की तरफ देख रहे हैं, तो एक फिक्स पॉइंट बनाकर उस पर आप देखें। बार बार सिर को ज्यादा ना घुमाएं, और खासतौर पर जो मूविंग चीजें हैं, जैसे आप बाहर जो सीनरी है कि पेड़ और पहाड़ जैसे चलते से लगते हैं, या और कारें या और दूसरी गाड़ियां जा रही हैं आसपास, उनको ना देखें, उससे ये मोशन सिकनेस और बढ़ती है, तो आप फिक्स जगह पर देखें। अगर आप अपनी गाड़ी से आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास सुविधा है, तो आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहें।
जी,
आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, और आप जो है इसमें अगर आप अपनी कार में हैं या ट्रेन में हैं और खिड़की खोल सकते हैं तो आप फ्रेश एयर उसमें असर करती है, तो प्लेन पर या शिप वगैरह पर तो इतना संभव नहीं है, लेकिन आप फ्रेश एयर, आप अपनी आंखें बंद कर सांस लेने पर थोड़ा सा फोकस करें और गहरी धीमी सांसें लें, तो उससे भी फर्क पड़ता है। बच्चे हैं उन्हें आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, कोई गेम सा खेल सकते हैं, तो म्यूजिक सुन सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। अगेन, अगर आपकी अपनी कार पर जा रहे हैं तो आप अगर ब्रेक ले सकते हैं, आप बीच बीच में रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जिंजर लोग कहते हैं, अगर अदरक जो है उसको लिया जाए चाहे खाने में या जिंजर बिस्किट्स वगैरह, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। उसका कितना साइंटिफिक बेसिस है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन काफी लोग इसको मानते हैं। कुछ चीजें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, वो है कि अगर आपको ये ट्रैवल सिकनेस मोशन सिकनेस होती है तो फिर आप ट्रैवलिंग के दौरान पढ़ें नहीं, कि किताब वगैरह आप पढ़ते हैं तो उससे ज्यादा वोमिटिंग आती है। आप कोई मूवी मत देखें या आप गेम वगैरह ना खेलें अपने फोन पर, तो जैसा मैंने कहा एक जगह फिक्स्ड आप देखें, उससे फर्क पड़ता है। चलती हुई चीजों को मत देखें, खिड़की के बाहर मत देखें, और जाहिर है कि आपको उल्टी होने का रिस्क है, तो आप ज्यादा हैवी खाना ना खाएं, आप स्पाइसी खाना ना खाएं, ज्यादा मिर्च मसाले वाला, अल्कोहल ना पिएं, और अगर आपको उल्टी वगैरह का होता है तो जब आप कहीं पार्क में जाते हैं किसी एडवेंचर पार्क में वहां पर जो राइड्स वगैरह होती हैं झूले जो होते हैं उसको भी आप अवॉइड करें। जिन लोगों को इससे कुछ नहीं होता है उन्हें पता ही है कि अब मैं जा रहे हैं तो हमें वॉमिटिंग होनी है या जी मतलाना है तो दवाइयां उसके लिए मौजूद हैं, बच्चे भी ले सकते हैं बड़े भी ले सकते हैं। तो उसमें तीन तरह की दवाइयां होती हैं, टैबलेट्स होती हैं और छोटे बच्चों के लिए वो डिसॉल्वेबल टैबलेट्स भी हैं जो घुल जाती हैं तो आप उन्हें बच्चों को दे सकते हैं। दूसरे पैचेस आते हैं जो 10 साल से ऊपर के बच्चों को या एडल्ट्स को दिए जा सकते हैं, तो एक पैच होता है आप स्किन के ऊपर उसे चिपका देते हैं। और बैंड्स आते हैं, बैंड्स में उतना उसका अच्छा इफेक्ट नहीं है और बहुत से अधिकतर लोगों को उसका फायदा कम ही होता है। तो मेडिकली टैबलेट्स और पैचेस, ये जो ट्रैवल से रिलेटेड ये जो मोशन सिकनेस की दवाई है या और भी ट्रैवल से रिलेटेड काफी सारी चीजें जो हैं ये आपको प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं मिलती हैं, आपके जीपी आपको इसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, तो आप अपने जीपी से अपॉइंटमेंट लेकर एक अपॉइंटमेंट वेस्ट ना करें क्योंकि आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ सकता है। ये आपको केमिस्ट से मिलती है, आपको खरीदनी पड़ेंगी, उसके पैसे देने पड़ेंगे, प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं मिलेगी और आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ये केमिस्ट से आपको डायरेक्ट मिल सकती है। तो टैबलेट्स हैं, पैचेस हैं, आप इनका इस्तेमाल करें और ये जो चीजें मैंने बताई इसका ध्यान दें तो मोशन सिकनेस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। जी
ओके। एंड एक सवाल और पहुंचा है और इनका कहना है कि सवाल जैसा इन्होंने लिखा है मैं वैसे ही आपको जल्दी से बता देती हूँ और एक ब्रेक का भी वक्त है तो सवाल बल्कि मैं चाहूंगी आप खुद ही आकर अगर
जी ब्रेक में तो सवाल देख लेते हैं जी।
ये हेडेक से रिलेटेड है और हम लौट कर आते हैं बस इस छोटी सी ब्रेक के बाद, हम यूं गए और यूं आए।
सबरस रेडियो लेके आ रहा है खास फ्राइडे वास्ते तिया दा मेला, फ्राइडे 26 जुलाई एट द कैपिटल वेन्यू वेस्टर। ज्यादा जानकारी ले सुनते रहो तुहाडा अपना सबरस रेडियो।
सबरस भगवती शक्तिपीठ नॉटिंघम आयोजित श्रीमद् भगवत कथा सोमवार तारीख 24 जून से रविवार तारीख 30 जून तक भारत के अंतर्राष्ट्रीय कथाकार पूज्य संजीव कृष्णा ठाकुर जी की मधुर वाणी में कथा श्रवण का लाभ ले। कथा वेन्यू श्री तमणिया माछी महाजन हॉल 103105 फ्रिस्बी स्ट्रीट लस्टर। कथा का समय शाम को 4 से 7 बजे तक। ये कथा का सीधा प्रसारण आस्था टीवी पर होगा। जस्टिस ऑफ हेल्थ के सहयोग से ये कथा भगवती शक्ति पीठ मंदिर के लाभार्थ हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 01923903241। जय श्री कृष्ण।
ब्राइट स्टार एंटरटेनमेंट रजू करे छे जिगर धान गढ़वी जिगरा, अ म्यूजिकल शो नॉट टू बी मिस्ड ऑन 5th जुलाई एट द मॉर्निंग साइड एरिना लेस्टर। फॉर टिकट बुकिंग्स कॉल राडिया सुपरस्टोर ऑन 0116-266-9409, देसी बाइट्स ऑन 0116-319-6766 and Khem Raj on 0758-348-2404. Book your seats now.
चलिए लौट कर आते हैं इस तरफ और डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला हमने जहां छोड़ा था वहीं से पिक करते हैं, लेकिन अब हम और प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकेंगे। लेकिन एक प्रश्न जो अभी डॉक्टर साहब ने देखा है तो मुझे नहीं लगता है या आपको लगता है कि उसका जवाब आज हो पाएगा।
एमरजेंसी थ्रोम्बोसिस की बात की है उन्होंने, थ्रोम्बोसिस एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है तो थोड़ा सा उसका रिस्क खासतौर पर प्लेन पर ट्रैवल करने में होता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो अगले हफ्ते हम वैसे भी जिक्र उसका करने ही वाले हैं। तो ट्रैवल से संबंधित जो जानकारी है हम काफी डिटेल में धीरे धीरे बात कर रहे हैं डिस्क्राइब करके, तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक तो मिनिमम और जानी चाहिए, हो सकता है उसके अगले हफ्ते भी जाए, तो अगले हफ्ते हम ये थ्रोम्बोसिस के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। खासतौर पर एक दो बातें जो प्रोग्राम में कुछ मिनट ही बचे हैं मैं कहना चाहता था, एक तो ये कि कहीं पर आप जाते हैं और वहां आपको अगर कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ जाती है, अनफॉर्चुनेटली आपकी तबीयत खराब हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है वगैरह, तो आप ध्यान रखें कि वहां पर जो है बहुत सी कंट्रीज में अभी भी पुरानी नीडल्स और यूज की हुई नीडल्स और सिरिंजेस वगैरह वो लोग दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। यहां से आप कई बार एक नीडल पैक होता है, जो स्टेराइज नीडल पैक होता है, ट्रेवल पैक होता है, वो केमिस्ट से या ट्रेवल क्लिनिक से मिलता है, वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि वहां से कोई जरूरत पड़ने वाली है। ब्लड टेस्ट जो है, अगर सॉरी ब्लड अगर आपको चढ़ाना पड़ जाता है, खून चढ़ाना पड़ जाता है, तो काफी जो हमारे ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका की जो नॉर्थ अमेरिका कनाडा वगैरह हैं, जापान ऑस्ट्रेलिया जो डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर जितना भी ब्लड होता है वो पहले जो भी कोई डोनेट करते हैं तो उसको पहले एचआईवी के लिए, एड्स के लिए चेक किया जाता है। लेकिन कई बार अभी भी काफी डेवलपिंग या अनडेवलप्ड कंट्रीज में ब्लड को उतने अच्छी तरह से टेस्ट नहीं किया जाता है, तो आप वहां पर खून तभी चढ़वाएं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तभी लें कि जब बिल्कुल जरूरी है वो, और आपके पास और कोई चारा नहीं है। अपना ब्लड ग्रुप वगैरह आप वहां पर देखें कि आपको कौन ब्लड दे रहा है, और खासतौर पर उन कंट्रीज में अगर आप देखें कि ब्लड बैंक की जहां पर सुविधा नहीं है, अगर किसी जानने वाले व्यक्ति को जो आप जानते हो या ट्रस्ट करते हो कि इन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, उसका ब्लड अगर आपको मैच करता है तो आप वो चढ़वाएं, बजाय इसके कि अननोन का ब्लड लेने के। और अगर आपकी तबीयत इतनी, आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि वहां जाकर आपको लगता है कि ऐसा ना हो कि खून चढ़वाना पड़ जाए, या प्रेगनेंसी की कंडीशन है, तो आप ट्रेवल ना ही करें। ये बात मान के चलें कि वहां जाएंगे तो वहां पर क्या फैसिलिटीज हैं कि नहीं, वो जैसे हमने पहले कहा आप रिसर्च करके जाएं कि आपको क्या जरूरत वहां पड़ सकती है। तो एक तो वो बहुत बहुत खास तौर पर इसका ध्यान दें। दवाइयां अगर आपको यहां पर कोई दवाइयां चल रही हैं, आपको वो जाहिर है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ वो दवाइयां भी लेकर जाएंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप अपने जीपी से, आपको अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं है, अगर आपकी कोई दवाइयां रिपीट प्रिस्क्रिप्शन पर हैं तो आप अपने रिसेप्शन पर कह सकते हैं कि आपको वो रिपीट प्रिस्क्रिप्शन जो प्रिस्क्रिप्शन के दाहिनी तरफ व्हाइट साइड पर लिखा होता है, तो वो आपको प्रिंट करके दे सकते हैं, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट टाइप का एक प्रूफ हो जाएगा कि ये दवाइयां आपकी चल रही हैं। कुछ एयरलाइंस कुछ खास तौर पर दवाइयों में, कुछ कंट्रीज में वो लेटर चाहते हैं कि आपको कि क्या दवाइयां आप साथ ले जा रहे हैं। वो एनएचएस सर्विस नहीं है, आपके जीपी उसके लिए आपसे फीस ले सकते हैं उस लेटर के लिए, लेकिन आपको बना देंगे वो अगर आपको चाहिए तो। काफी दवाइयां ऐसी हैं जो अप टू 90 डेज 90 दिन की आप यहां से ले जाना आपको अलाउ है। कंट्रोल्ड मेडिसिन जिसे कहते हैं, जो मॉर्फीन या स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स या इस तरह की कई दवाइयां होती हैं, तो वो आप 90 दिन से ज्यादा यहां से ले जा भी नहीं सकते हैं। अगर आप ज्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको फिर वहीं जाकर लेनी पड़ेंगी। लेकिन बात ये नहीं है कि आपको यहां से कितना ले जाने दिया जाएगा, बात यह है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां वो अंदर क्या जाने देंगे कि नहीं। आपने पढ़ा होगा कुछ समय पहले कि कुछ लोग यहां की पेन किलर्स जो उनकी यहां पर रूटीनली चलती थी वो ले गए थे, और गल्फ की शायद किसी कंट्री में उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वहां पर वो अलाउड नहीं थे और काफी प्रॉब्लम हुई। तो इसके बारे में अंबर जी टाइम नहीं है, हम लोग जो ट्रैवलिंग विद मेडिकेशन है अगले हफ्ते इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो चलते समय जो मैसेज आखिरी मैं ये देना चाहता हूं वो यही है कि आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, तो आप पूरी पहले उसकी रिसर्च करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप जहां जा रहे हैं वहां क्या सुविधाएं हैं। अगर आपकी तबीयत वहां खराब हो जाती है तो वो दवाइयां आपको जो अगर जरूरत पड़ सकती है वो वहां है कि नहीं है, उस इलाज की सुविधा किन अस्पतालों में वहां पर है या नहीं है, प्लेन पर आपको क्या दवाइयां ले जाने दी जाएंगी या नहीं, उस कंट्री में आपको क्या दवाइयां अंदर ले जाने देंगे या नहीं, ये सब पूरी रिसर्च करके तब आप प्लान बनाएं।
जी चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दैट। और ये जो भी आपने पेन किलर्स की बात की थी, इसको डेफिनेटली अगले हफ्ते जो है थोड़ा विस्तार में बात करेंगे, क्योंकि अगर किसी एक को भी फायदा होता है इससे तो व्हाई नॉट।
जी बिल्कुल,
या थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, डॉक्टर राजीव वाधवा जी, जो हर हफ्ते आते हैं अपना कीमती समय निकालकर इतनी सारी जानकारी देते हैं हमारे श्रोताओं के लिए। और साथ ही अगर आपने मिस कर दी हो ये बातचीत तो लिसन अगेन ऑप्शन में दोबारा सुन सकते हैं। इसके अलावा हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे, अब न्यूज का वक्त जो है बेहद करीब है और वैसे भी आप लोगों के पास बहुत समय होता है हमें फोन करने के लिए। इस समय न्यूज के दौरान अब कुछ जो है फोन आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उस तरफ नहीं आ पाएंगे, बहुत समय होता है आपके पास पहले से, आप उस समय हमें कॉल कर सकते हैं। और अब चलिए मिलते हैं न्यूज के बाद, एंड वंस अगेन थैंक्स टू डॉक्टर साहब। 1260 AM डिजिटल